Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, कामयाबी को हासिल करना सिर्फ आसमान को छूने के बराबर नहीं है। कामयाबी तो यह है कि आप आसमान को भी छुएं और अपनी ज़मीन को भी ना भूलें। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच।
डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से एक जो मिड लाइफ होती है, अर्थात ऑलमोस्ट 35 to 40 का जो एज ग्रुप होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव एज ग्रुप होता है। कहीं ना कहीं हम जिंदगी के सभी पड़ाव को ऑलमोस्ट कंप्लीट करके उस एज ग्रुप में आते हैं। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होता है। ऐसे में कई बार एडवेंचर की कमी हो जाती है क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस हो जाती है। रिश्तों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि अगर हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसे में रिश्तों को सही तरह से हम जिए, ये कैसे पॉसिबल है उतने ही एक्साइटमेंट के साथ जितना हम यूथ लाइफ में थे?
कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी के जो अलग अलग रंग हैं जिससे एक अल्टीमेट रंग बनता है
जी,
उनको अलग अलग बॉक्सेस समझ लेते हैं। देखिए, अगर एक मकान में कमरे अलग अलग हैं, मकान तो फिर भी एक ही है ना, तो हमारी ज़िंदगी में हो सकता है कि रिश्तों का एक अलग कमरा हमने बना लिया है, काम का एक अलग बना लिया है, बच्चों का अलग बना लिया है, अपने लिए अलग बना लिया है, लेकिन हो तो हम सब के साथ ही रहा है।
बिल्कुल,
एक ही व्यक्ति इन सब चीज़ों में सेंटर पॉइंट है।
करेक्ट।
अगर एक चीज़ ठीक नहीं चल रही है तो उसका हर किसी चीज़ पर असर आता है।
सो ट्रू।
अगर कोई अपने घर से लड़के गया है तो ऑब्वियसली अपने ऑफिस में जाके स्माइलिंग एंड डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं उस चीज़ पे भी असर आएगा। अगर वो अपने जीवन से कंफ्यूज्ड है तो बाहर जाके एक बॉस बन के दूसरों को क्लैरिटी नहीं दे सकता। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके जो इन सब में सेंटर है वो हूँ मैं। अगर मैं अपने आप को अनक्लटर्ड रखूँगा, साफ रखूँगा, क्लियर रखूँगा, और जहाँ जहाँ से कष्ट आ रहा है या मैं कष्ट महसूस कर रहा हूँ, हो सकता है कष्ट है नहीं, मैं सिर्फ महसूस कर रहा हूँ, तो अगर उसको मैं थोड़ा सा आंकलन करके साथ साथ साफ करता रहूँगा तो बाकी सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी ही।
बिल्कुल।
हम भूल जाते हैं कि सिर्फ बाहरी चीज़ों पर ध्यान देने से मेरे मन को शांति नहीं मिलने वाली। और आमतौर पे हर एज ग्रुप में होता है, लेकिन इस एज ग्रुप में थोड़ा खास तौर से, बिकॉज इस एज ग्रुप तक बाकी लोग भी समझते हैं कि अब मैं मैच्योर हो गया। बाकी लोगों के साथ साथ हम भी सोचते हैं कि हम एक खास पड़ाव तक पहुंच गए तब मुझे मैच्योरिटी की बातें करनी चाहिए। लेकिन अगर हमने उसके लिए काम नहीं किया तो सिर्फ वो एज आ जाने से मैच्योरिटी नहीं आने वाली।
बिल्कुल।
उसके लिए काम ये करना पड़ता है कि क्या मेरे जो सारे रिश्ते हैं वो क्लियर हैं, यानी कम्युनिकेशंस क्लियर हैं। दूसरा, मैं किसी अल्टीरियर मोटिव से दूसरे को या अपने आप को तंग तो नहीं कर रहा। मेरा हफ्ते पहले किसी से झगड़ा हुआ, उस समय मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, सब एवरीथिंग इज ओके, लेकिन मन में मैं लेके चल रहा हूँ। अब जब मैं मन में लेके चलूंगा तो जब भी मौका आएगा कोई कटाक्ष, कोई अंडर द करंट वाली बात या कोई ऐसा कमेंट, मुंह से अपने आप निकल जाता है।
True.
तो जब वो निकलता है तो वो रिश्ता कभी भी सही नहीं चल पाता। एंड वी सी दिस हैपन ऑफन एनफ, स्पेशली जो सो कॉल्ड क्लोज रिश्ते हैं। मैं कई बार समझ नहीं पाता हूँ कि क्लोज रिश्तों में दूरी क्यों होती है। क्योंकि अगर वो इतने क्लोज हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें पूरी साफ सफाई हो।
करेक्ट।
क्योंकि उसी रिश्ते ने मुझे रोज एक ऊर्जा भी देनी है।
हम्म।
और मुझे नीचे खींचने से रोकना भी है। होता क्या है कि कई बार जो रिश्ते जबकि प्रॉपर नहीं बने होते, यानी मैरिज से पहले अगर कोई रिलेशनशिप है जो कि बाद में मैरिज में बदली, या मैरिज का शुरुआती टाइम जिसमें कि आपने एक रिश्ता बनाया, उसके बाद हम दोनों ये समझते हैं कि अच्छा अब ये फिक्स हो गया, स्टैंप लग गई, समाज की भी, लीगल भी, और हम भी इसके लिए और काम ना भी करें तो भी चलेगा।
करेक्ट।
तो जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सो कॉल्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बाकी बाहर वालों से रिश्ते बनाना, पैसा कमाना, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना वगैरह वगैरह, तो हम सोचते हैं उसके लिए हम एनर्जी लगाएं। लेकिन ये जो चीज़ है जिसमें कि हम रोज़ जी रहे हैं, अगर उसमें खालीपन है
जी,
तो बाहर से हमारा घड़ा नहीं भर सकता।
True।
और अगर ये भरा हुआ है तो बाहर से खाली होगा भी, तब भी हमें अपना घड़ा भरा हुआ महसूस होगा।
डॉक्टर साहब, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आई वुड से 50% ऑफ पॉपुलेशन इस चीज़ से दुखी है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है लेकिन उनके पास है। बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन रिलेशनशिप्स, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज फेसबुक पे हम देखेंगे एक कपल उस एज ग्रुप में बहुत घूम रहा है, उनके अपडेट्स आ रहे हैं, उनको आप देख करके कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं। हम फिर फील करते हैं कि हम तो सिर्फ काम करते हैं, हमारे रिलेशनशिप में तो वो बात नहीं रही अभी, पहले हम कितना घूमते फिरते थे। कहीं ना कहीं अनसैटिस्फैक्शन तब आता है जब आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, और ये इस एज ग्रुप में खास करके विमेन के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है। इनके बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हम अपने क्लिनिक्स में देखते हैं और उसके द्वारा जो समाज का आईना देखते हैं, तो जो असल में अगर ये है तो जैसे ही कैमरा खुला तो स्माइल हो जाती है। कई बार जो हमारे मन के भावनाएं हैं, हम उन्हें साइड पे रख के दूसरों को दिखाने के लिए कई बार वो जो स्माइलीज हैं और वो सब पोस्ट करते हैं, उनको टाइप करने में या एक स्माइल के साथ खींचने में फोटोग्राफ कुछ नहीं लगता। बाहर वालों को कई बार लग सकता है कि बहुत खुश कपल है, हमारे क्लिनिक में आके पता लगता है कि अंदर से बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि उस कपल ने जो जो हुआ है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो, जो शायद आप ले रहे हैं। शायद उस कपल ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, शायद उनकी शुरू से कंपैटिबिलिटी अच्छी थी, शायद कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझते हैं, शायद दोनों इंडिविजुअली अपने जीवन से अदरवाइज सेटिस्फाइड। कुछ भी हो, आपकी नैया में आप ही बैठ सकते
हो,
आप उसकी नैया में जंप मार के अगर बैठेंगे तो नहीं चलेगा, एंड जो जो कमियां हैं वो आप ही पूरा कर सकते हो। दूसरों से सीख लेना, दूसरों को एक रोल मॉडल रखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो अच्छा है और उस वजह से जेलस होना तो जो कष्ट है उस कष्ट को और बढ़ाने जैसा। वहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा कि जो कपल्स ये देखते हैं कि दूसरों के पास क्या क्या है, तो अपनी थोड़ी सी भी कमियाँ उनको ज़्यादा महसूस होती हैं। और कई बार हम जब लोगों से कहते हैं कि एक्सरसाइज दी जाती है एंड एवरीबडी कैन डू इट, इट्स वेरी इजी कि आप एक तरफ लिखें कि साहब आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कमियां हैं, और दूसरी तरफ लिखें कि क्या क्या चीज़ें ठीक हैं। और जो सिर्फ आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से ना लिखें कि क्या क्या ठीक है, जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में ठीक नहीं है और आपकी ज़िंदगी में ठीक है उस कंपेरिजन्स के साथ लिखें। तो यहीं से शुरुआत करके कि दोनों इकट्ठे तो रह रहे हो, बहुत सारे कपल्स हैं जो इकट्ठे नहीं रहते, दोनों की शादी तो बरकरार है, बहुत सारे हैं जिनके डाइवोर्स हो रखे, कम से कम बाहर वालों के सामने तो नहीं झगड़ते हो, कई हैं जो बाहर वालों के सामने तू-तू मैं-मैं करते हैं। कहीं ना कहीं जब आप उन चीजों को गिनना शुरू करेंगे तो तो अप्रिशिएट कर पाएंगे कि आपका पार्टनर जो है उसने भी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयाँ लाए हैं और आपने भी उन्हें सस्टेन किया। अब जो वो दूसरा कॉलम है जिसके के अंदर जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बाहर वालों की तरफ से हैं।
अच्छा।
और वो हम बहुत देखते हैं, तुम्हारे मम्मी ने या पापा ने ये क्यों किया, तुम्हारी फ्रेंड मुझसे ऐसे बात क्यों नहीं करती या करता। उन लोगों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं।
True.
और कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को अपने इम्प्रूवमेंट अगर रिलेशनशिप को करनी है तो लिस्ट से बाहर रखना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग हमेशा नहीं तो आते रहेंगे अगर हम उन्हें बुलावा देते रहेंगे तो। और अगर किसी ने कुछ कहा, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं या मेरे पेरेंट्स हैं, इट डजंट मैटर, अगर मैं उन्हें अपने रिश्ते में नहीं आने देता हूँ तो उनका मेरे ऊपर वो प्रभाव एनीवे कम होता जाएगा। प्लस इसी लिस्ट में ये देखें कि जो हो चुका है, कई बार लोग इस चीज़ पे कि 8 से 20 साल पहले जब मैं घर में एंटर हुई थी तो तुमने मुझे स्माइल नहीं दी, बिलीव मी हम ऐसे भी लोगों को, यस आई एम वेरी सीरियस, हम ये बातें, या जब मैं 10 साल पहले शादी करके आई थी तो मेरी आरती नहीं उतारी गई थी, उसके बाद तुम्हारे छोटे भाई की जब शादी हुई तो उसकी वाइफ की आरती उतारी गई, वगैरह वगैरह कई चीज़ें होती हैं जो लोगों के मन में रहती हैं और रहती हैं, उन्हें उसके साथ डील करना, मैं इसमें सही या गलत नहीं कह रहा हूँ, बट जो जिसको खा रहा है उसको वो देखना है कि क्या चीज़ है जो उसे खा रही है, तो वो जो चीज़ें हैं वो नहीं बदली जा सकती।
खास लेकिन करके पास्ट को तो आप बदल सकते,
पास्ट के इवेंट्स को नहीं बदल सकते।
Exactly.
लेकिन उसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना होता कि अगर वो चीज वैसी ना भी हुई तो असल में आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, एंड द आंसर मोस्टली इज नॉट अ बिग डील। लेकिन उसके बाद जो इंटरप्रेट करके मैंने रोज उसे अपने अंदर रख के कष्ट महसूस किया, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल में दस ला रहा है। तो वहाँ पे उस हिस्से को भी अगर आप निकाल दें, फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसपे कि कई लोग अटक जाते हैं कि इतनी बार हमें बाहर जाना चाहिए, मेरे बर्थडे पे ये होना चाहिए, फ्यूचर में तुम गारंटी दो कि किसी और से बात नहीं करोगे, वगैरह वगैरह, जो कि रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जिसके साथ लोग कष्ट पाते हैं।
करेक्ट।
अगर उनको भी अभी छोड़ दें और तब लिस्ट में एक या दो चीज़ें रह जाएंगी जो कि आज से और वर्केबल हैं।
ओके।
और अगर हम उन्हें सॉल्व कर लें तो बहुत मुश्किल काम नहीं है।
डॉक्टर साहब, अब मैं बात कर रही हूँ कुछ उन लोगों के बारे में जो कि अपना देश छोड़कर किसी और देश जाते हैं, शायद उनके काम का उन्हें प्रमोशन मिला है, शायद उन्हें ट्रांसफ़र हुआ है, या वो खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे अब इस जगह पे नहीं रह करके कहीं और शिफ्ट होना है, पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही होती है, कहीं ना कहीं जो पूरा वातावरण है वो बदल जाता है, ज़िंदगी को जीने का तरीका भी कई बार बदल जाता है, ऐसे में उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को उतने ही नॉर्मल तरीके से जी पाए जितना वो अपने देश में जी रहे हैं।
देखिए, कुछ फर्क तो वैसे अगर आप अपने ही देश में किसी और जगह चले जाएं तो भी होता है माइग्रेशन करने से।
बिल्कुल।
क्योंकि उसमें जो आपकी रूट्स हैं या जो आपके सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं।
बिल्कुल।
और साथ ही साथ अगर मान लीजिए एक गांव से कोई व्यक्ति एक शहर में आया है या एक अलग तरह के कल्चर में आया है
जी।
तो आसपास के लोग अलग हैं, उनका बातचीत करने का या जो कि एक्सेप्टेबल सोशल नॉर्म्स हैं वो बदल जाते हैं। लेकिन अगर यही जंप एक और किसी कंट्री में जाके होती है तो वहाँ पे कल्चर बिल्कुल ही अलग होगा।
बिल्कुल।
वहाँ के लोग भी अलग होंगे, पहले आपको वो कल्चर समझना पड़ेगा। और आपने ये जो बात पूछी है बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि अगर हम भारतवर्ष में ही देखें तो 80s और 90s में
जी।
बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली प्रोफेशनल्स ने
जी।
भारत को छोड़ के अलग देशों में बसना शुरू किया, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, फिर आईटी प्रोफेशनल्स थे। तो एक तरह से वो यंग थे जब वो गए, और अब वो अधेड़ावस्था में हैं, जब वो वहाँ हैं।
बिल्कुल।
इस दौरान में बच्चे भी हुए जो कि वहाँ के कल्चर से ही पले
प्रभावित है, बिल्कुल।
और प्रभावित हुए पूरी तरह से, प्लस साथ साथ जो कि रहने का तरीका, अगर वो यहाँ होते तो वो अलग है और जब वो वहाँ है तो अलग है।
बिल्कुल।
तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो कई बार जनरेशन से चल के आ रही है, टाइम टेस्टेड है। लेकिन अगर वो उन्हीं पे रहते हैं तो आसपास के जो लोग हैं उनके साथ वो मिक्स नहीं कर पाते।
बिल्कुल।
तो एक तरह से वो दोहरी जिंदगी कई बार एक तो जीते हैं कि अपने घर में कुछ और वैल्यूज हैं और बाहर दिखाने के लिए कुछ और वैल्यूज हैं। एंड स्पेशली मेन के लिए ये बात कई बार ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि यहाँ पे फिर भी बाय एंड लार्ज हमारे देश में पुरुष प्रधान देश है।
बिल्कुल।
तो कुछ रोल्स हैं जो कि पुरुषों के लिए ज़्यादा सेलेक्ट किए गए हैं, लेकिन जब वो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं तो उनको भी काम करना, घर का भी बाहर का भी इक्वल होना शुरू हो जाता है। प्लस आप जिस प्रकार से अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं उसमें भी फर्क हो जाता है। बाहर जब आप महिलाओं से मिलते हैं तो उनको इज्जत देना एक अलग रूप से होता है, तो वो भी अलग हो जाता है। वहाँ पे कई बार लोग जो कि उन्होंने सीखा कुछ और अपने बचपन में, अब करना कुछ और है, तो उसमें बड़ी डाइकोटमी महसूस करते हैं और कई बार लोग उस चीज़ में स्टेबलाइज नहीं हो पाते। बट वन थिंग वन हैज़ टू रियलाइज इस, और वहाँ से कई बार हम दूसरे लोगों से जो कि उस कल्चर के हैं वो सीख सकते हैं कि माइंड एक बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ है। माइंड में बहुत सारी पावर्स भी हैं जिनको कि हम आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते, और माइंड कई नई चीज़ों को सीख भी सकता।
अच्छा।
और ये जो सही और गलत है ये भी सिर्फ हमारी क्रिएशंस हैं। ज़्यादातर चीज़ें मूल्यों के सिवा, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, वो हमने अपने परिवार में या समाज में फिक्स किया। अगर दूसरे कल्चर में जाके देखें
जी।
तो बिल्कुल अलग ढंग से की कोई चीज़ भी खूबसूरत हो सकती है। वहाँ पे कुछ जो बेसिक मूल्य हैं जो कि हर जगह पर कारगर सिद्ध होते हैं कि अगर मैं दूसरे व्यक्ति को इज्जत देता हूँ तो मुझे इज्जत मिलती है।
True.
अगर मेरी उसके साथ अटेंशन पूरी है तो मुझे अटेंशन मिलेगी। अगर मैं दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो किसी न किसी स्टेज पे दूसरा व्यक्ति भी मेरे लिए करने की कोशिश करता
है। बिल्कुल।
अगर हम दोनों इकट्ठे कुछ करते हैं तो काम जल्दी ख़त्म होगा और हम दोनों को अपने लिए और बाकी चीज़ों के लिए समय अधिक मिलेगा। अगर मैं आज कोई चीज़ ऐसी करता हूँ जिससे कि दूसरे को मैं बढ़ावा देता हूँ या उसकी इज्जत खास तौर पे बाकी लोगों के सामने बढ़ाता हूँ तो वो मेरे लिए इज्जत की बात समझी जाएगी, गलत नहीं समझी जाएगी।
बिल्कुल।
बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पर हम जब दूसरे कल्चर में जाते हैं
तो बहुत ज़्यादा
वहाँ
पड़ता है।
वहाँ ज़्यादा सीखने को भी मिलता है और वहाँ ज़्यादा ये कारगर भी सिद्ध होता है। ये शुरू में तो 10-15 साल कई बार लोगों को लग जाते हैं ये चीज़ सीखने में।
बिल्कुल।
अपने पुराने कल्चर को छोड़ के नए कल्चर की अच्छी चीज़ें अपनाने के लिए।
बिल्कुल।
लेकिन जो उनके बच्चे हैं फिर वो उसी चीज़ को सीखते हैं। वहाँ पे अगर हम अपने परिवारों में मूल्यों को और कुछ आध्यात्मिकता को अपना लेते हैं
जी।
और आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हमने बैठ के सिर्फ भजन इकट्ठे सुना या सिर्फ एक अच्छा लेक्चर सुना,
कहीं ना कहीं एक वे ऑफ लाइफ बनाने की ज़रूरत है उनको। जितना मैं समझती हूँ कि अगर किसी बच्चे को ग्रूम करना है और उसे अपने देश की वैल्यूज़ को कभी भूलने नहीं देना है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो करते हैं उन्हें देख करके बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, कहीं पे भी हो, शायद वो इंडिया से बाहर भी हो। लेकिन जब मम्मी को पूजा करते देखेंगे या फिर उन्हें फास्ट करते हुए देखेंगे तो वही चीज़ बच्चे भी सीखते हैं। रैदर देन उनको बताना, उससे बेटर है वो खुद करें और अपने बच्चों को दिखाए, उससे वो ज़्यादा सीखते हैं।
वहाँ पे खासतौर पे वो जो लोग कि थोड़े से ओपन या वेस्टर्नाइज कल्चर में जाते हैं वहाँ पे बच्चे हर चीज़ के बारे में जो रहस्य है या गहरापन है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि रिचुअल्स हैं सिर्फ या ऊपर ऊपर से है या कई बार आडंबर हैं, उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते। और उसमें कोई बुराई नहीं है,
बिल्कुल।
जो एसेंस है जीवन का उसके बारे में कई बार उनके प्रश्न आपको सोचने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। और आमतौर पे ये जो मिड लाइफ में क्राइसिस, खासतौर पे उन लोगों के जो कि बाहर हैं, उनके कई बार ये भी आते हैं कि उन्होंने वो प्रश्न नहीं पूछे, किसी चीज़ को फॉलो करते गए। पर आज जब अपनी ज़िंदगी से या बच्चों के द्वारा वो प्रश्नों का जवाब देना होता है तो उन्हें खुद भी उन मूल्यों के बारे में सोचने की ज़रूरत होती है।
करेक्ट।
और उस कारण से वो कई बार, मैं तो कहूँगा कि इम्प्रूव भी कर सकते हैं, जो जीवन में एक नीरसता है उसको एक नए रूप में भी लेके आ सकते हैं। और जब वो उस रूप से अपने जीवन में उसको अपनाते हैं तो वही चीज़ सीख के, जैसा आपने कहा कि बच्चे भी उसको फिर आगे फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं मन की शांति की ज़रूरत है, उनको भी खुशी की ज़रूरत है। और वो कई बार स्पेशली जबकि भौतिकवाद ज़्यादा होता है तो उस भौतिकवाद की वजह से लोगों को मीनिंग जीवन में इन मूल्यों में ज़्यादा दिखता है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है। और अगर पति पत्नी और पूरा परिवार इकट्ठा उस पर काम करता है तो वो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने एकदम सही कहा। अगर हमें अपने रिश्तों में मिठास लानी है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि अपनी जगह को छोड़ करके परदेश जाते हैं या कोई और देश में जाकर के सेटल होते हैं, तो उनके लिए कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें उन्हें जूझना होता है। लेकिन अगर वो एज अ टीम फैमिली को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, तो कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम होती है कि एक नए जगह पे जाकर के आइसोलेटेड फील करना, वो बहुत कम करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को ज़रूर इंटैक्ट रखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमने जाना कि भले ही कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर फैमिली एकजुट है, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के पूरक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है जिससे हम दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर हम सब एक साथ हैं तो फिर क्या कहने। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।